इसको पावा हम कबूल करें। जो आप पूछते हैं, जो आप पूछते हैं, हाँ हाँ बोलते
क्या बात,
मैंने भी जाना चाहते कितना क्या पूछते
हमारा मन नहीं लगता है, इस पर मैंने विचार किया और विचार करके देखा तो मैंने पाया तुम आलसी और कोढ़िया हो, इसलिए कुछ नहीं करना चाहते तुम्हारी, या तो घर से यदि छोड़ करके पूरा चले आओ मठ में, तब तक तुमको मठ में जो सेवा होगी करो रहो, और घर में यदि रहेगा तो कुछ करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, घर में चुपचाप आलसी तरह से पड़े रहोगे।
नहीं गुरुदेव, अगर मैं जैसे काम पर जाऊंगा, कहीं अगर मैं काम करने जाता हूँ तो शाम की जो सेवाएं हो वो मुझे आने, अगर कोई सेवा होगा तो हमें आने नहीं देंगे, वो
क्या करना ही पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा, नहीं तो दूसरों के सिर पर तुम खाएगा और ये करेगा, ये ठीक नहीं, कुछ करो, अपने पैरों पर खड़ा रह करके गृहस्थ में रहो, अन्यथा सब छोड़ करके चले आओ और आराम से भगवान का भजन करो, यहाँ जो कुछ मिल जाएगा खा लो, ठीक है ये बात, नहीं तो उनसे कहेंगे हमको 5,000 दीजिए, हमको कहेगा जो सही ऐसे मांगता फिरेगा, ये भी ठीक नहीं है।
ठीक है गुरु,
कुछ प्रश्न है किसी का?
महाराज जी एक बात, किसी प्रश्न के ऊपर ही मैं पूछता हूँ, जैसे मैं तो कुछ नहीं करता, मेरे पिछले कर्मों से मुझे मिल रहा है तो मैं भी आलसी हो गया?
नहीं,
आप परिश्रम करते हैं भगवान के भजन के लिए, लोगों को बतलाने के लिए, इधर उधर जाना आना, व्यवस्था सब अपने काज में लगे रहते हैं, वो कोई आप आलसी नहीं।
आपने बिजनेस इधर लोग को लगा रखा है, वो आके पंखा देते हैं, तो नहीं करते उधर से आगे किसी के सेवा लगे पंखा देना है।
अपने पैरों पर खड़े हैं, दूसरों के पैरों पर, बहुत से लोगों को की सहायता भी कर रहे हैं, ये आलसी नहीं। मठ में भी आकर के कुछ नहीं करते हैं, पलंग तोड़ते हैं केवल, कुछ मतलब नहीं है उनको, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। संसारिक लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे हम लोग, मैं तो अंततः कितना गुना अधिक परिश्रम करता दिन रात।
दिन रात वो काठमांडू में एक दिन लेक्चर नहीं हुआ, आपने कहा मेरे जिंदगी का दिन बेकार चला गया। एक दिन लेक्चर नहीं था, रेस्ट था और दिन ले। आज का दिन व्यर्थ गया।
कल जो आपको बतलाया शक्ति परिणाम बाद क्या है,
ये जगत शक्ति की परिणति है।
हाँ?
ये जगत शक्ति की परिणति है।
हाँ क्या मतलब, क्या
मतलब है कि जैसा पढ़ा जाए धर्म में,
ये क्या है?
हाँ जी
जीव,
जीव भी भगवान की शक्ति का ही तो परिणाम है, भगवान की शक्ति से ही तो जीव हुआ है।
कैसे बतलाइए? गीता में कहा ममई वांतो जीव लोके जीव अपरि इससत्तांतु
अन्यम परम जीव
परप्रकृति
यही रंगधर जति जगत।
तो ममई वांतो का तात्पर्य क्या है
महाराज जी? यहाँ पर फिर आप खुद ही लिखा हुआ आपने कि होने पर भी शक्ति मतलब भेद अभेद, ये शक्ति शक्ति और अशक्ति मार में कोई भेद भी है और अभेद भी है।
समझो जी, गोस्वामी विषय पर कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, उसमें जितनी भी शक्तियां हैं, परा अपरा तटस्थ सभी शक्तियां हैं। श्री कृष्ण की ये भी शक्ति है कि अपने से सब शक्तियों को दूर रख करके केवल तटस्था को ही अपने साथ में रखते हैं।
आया समझ?
हाँ जी हाँ जी।
उस समय उनका जो अंश होता है भगवान का वो विभिन्न अंश तत्व जीव है।
नहीं अभी ये नहीं समझ आया।
नहीं समझ में
आया। अभी जो बताया बाद में कि उस समय जो तटस्थ शक्ति को अपने पास,
अभी जो मैंने कहा है इसको समझा?
हाँ जी।
तटस्था इसमें सब कुछ आ जाएगा, शक्ति का परिणाम, तटस्था शक्ति का परिणाम, और उधर भगवान का अंश भी हो गया, सब विषयों की रक्षा हो गई।
गुरुदेव इसको इस तरह से मैं प्रस्तुत करता हूँ, दुर्योधन ठीक है, भगवान अपनी समस्त शक्तियों सहित जो है, समस्त शक्तियों सहित वो कृष्ण है, और उन शक्तियों सहित जो उनका अंश है वो उनके अवतार है,
स्वांश कहिए,
हाँ स्वांश, उनका जो स्वांश है वो उनके अवतार है, और अपनी समस्त शक्तियों से रहित होकर सिर्फ तटस्था शक्ति के संग जो भगवान है वो विभिन्न अंश जीव है।
रोहित नहीं होगा, सर्वस्व भगवान जो समस्त सब छिपा कर केवल तरल स्थिति में विराजमान होते हैं। नीचे से गंदी
है, नीचे से। हमने जो कहा समझा आती हो किस लिए बतलाओ हमको, जो क्या कहा, और नहीं तो किसी को आने नहीं देंगे, किसी को भी नहीं आने, बतलाओ तो तुम क्या कहा।
अभी जो आपने बताया कि है ना वो तटस्थता शक्ति के जो मतलब है ना, जो थोड़ा बहुत समझ में आया कि हम सब है ना भगवान की तटस्थता शक्ति है, तो फिर ना क्योंकि भगवान से भिन्न होके आ गए, बाकी थोड़ा बहुत आया प्रभु जी का समझ।
ठीक नहीं समझा
गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था कि है ना कई बार होता है कि आपकी कृपा किसी भी हो जाती है, जैसे जिनको हम जानते हैं है ना, तो और जैसे ठाकुर जी की भी कृपा होती है, उनको देखते कई बार गुरुदेव आपकी किसी पे कृपा होती है कि आप है ना किसी को आशीर्वाद देते हैं या कृपा करते हैं, और ठाकुर जी की भी किसी पे कृपा हो जाती है, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि मेरे को गुरुदेव ने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, या किसी को तो कहीं है, मैं उस गुरु भाई की या गुरु बहन के प्रति कोई वैष्णव अपराध तो नहीं कर रही कि मेरे अंदर
कभी किसी को आपने आशीर्वाद देते हैं देखा, आप कभी किसी को आशीर्वाद देते हैं, कल्याणम हो तू, मंगल हो तू,
उसको बुला के कह देते हैं ऐसा,
और ठाकुर जी की बात है तो बोलो मुझे गुरु जी आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, बोलो गुरु जी मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दूसरे को दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं या जिसको दिया देखो उनमें उनमें थोड़ा ग्लानी होती है, तो जिसको दिया आपने तो उनको उनको अपराध तो नहीं हो रहा है, बस ना अपराध
वो ये कह रही है कि किसी के ऊपर जब आप आशीर्वाद देते हो व्यक्तिगत रूप से उसके ऊपर ध्यान देते हो, और ऐसा लगता है कि मेरे पे ध्यान नहीं दिया, मैं छूट गई, तो कहीं मेरे से कोई अपराध हो रहा है, इसलिए गुरुदेव मेरे को नहीं देख रहे
हैं।
हाँ तो जिनको आप कृपा कर रहे हो उनके प्रति कहीं मैं अपराध तो नहीं कर रही, जेलस होके
तो ये नेचुरल है ऐसा होना,
इसलिए तो तुम्हारे मन का भाव ज्ञान करके तुमको बुलाया, समझ गई।
आपका भाषण सुना और इनका भाषण सुना और रामचंद्र जी का भाषण, तो हमको लगा ये तो हमसे अच्छा बोल सकते हैं, तो मैं तो इतना अच्छा बोल नहीं सकता, हमको याद आई प्रभुपाद, प्रभुपाद समझते हैं ना भक्ति सिद्धांत, वो जो भाषण देते थे लोगों को हंसाना भी चाहते थे वो नहीं होता था, लोग समझते नहीं थे
ये,
और फिर उन्हीं की भाषा को भारती महाराज और दूसरे नेमी महाराज सब बोलते थे, तो लोगों को हंसा देते थे, रुला देते और तालियां बजती, प्रभुपाद के भाषण में ताली ताली कुछ नहीं बजती। तो ये कल देखा जी आप लोग तो बहुत सुंदर बोल रहे हैं, आप लोग प्रचार कर सकें,
इलेक्ट्रिसिटी जब आते हैं पावर स्टेशन में आके इकट्ठी होती है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको जहाँ जितने उनको देते हैं, कोई 25 वाट है, कोई 50 वाट है, कोई 100 वाट है, जलता है, जिसलिए आप जितना पावर दे उतना जल रहा है।
जो पंखा है वो एसी नहीं बन सकता, और जो कूलर है वो फ्रिज नहीं बन सकता, वही बेचारा पड़ा रहेगा,
मतलब नहीं समझा।
पावर हाउस से बिजली आई, लेकिन बिजली अगर एसी को मिली तो वो एसी तक रहेगा, फ्रिज तो नहीं बन सकेगा। अब आपसे जो बिजली आ रही है, मैं जितना हूँ उससे आगे नहीं बढ़ सकता, आप जो भी चाहेंगे बन सकते हैं। कहाँ है एग्जैक्ट दर्द? अभी दर्द हो रही है? दर्द हो रही है?
आप बैठेंगे ना अभी? हाँ अभी बैठेंगे ना, जो आप बैठेंगे तो आप करेंगे। एक बात और पूछ लेते हैं,
यहाँ साउंड आगे चल रहा है, साउंड हो रहा है।
महाप्रभु जी की जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं वो पहले वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखी चैतन्य भागवत में, उसमें तो उन्होंने इस बात का रहस्य उद्घाटन नहीं किया कि ये राजा जी का भाव लेके आए थे। वो ऐसा लगता है खाली कृष्णदास कविराज जी ने ही इस चीज का रहस्य उद्घाटन किया है।
वो ये सब वर्णन करना चाहते थे, लिखा है उसमें, किंतु नित्यानंद प्रभु की महिमा बोलने में
डूब गए, वो सब लग गया,
इसलिए
उन्होंने ये कहा कि हमारे पीछे जो व्यास आएंगे वो करें।
महाराज कल आपने एक बात कही कि राधा जी जो हैं बाएं अंग से निकली हैं कृष्ण के बाएं, और गोपेश्वर महादेव दाएं से निकले हैं। तो ये हमने तो सुना आपसे कि बलराम जी आए हैं दाएं से और बाएं से राधा जी आई हैं।
नहीं तो बलराम जी का मैंने कभी नहीं कहा, तो वो दूसरी बात होगी। कृष्ण बलदेव जी के अंश हैं, बलदेव जी कृष्ण से आए हैं, कृष्ण ही हैं, केवल स्वरूप का थोड़ा सा अंतर है। वैसे मैंने नहीं कहा, बोलिए।
भ्रमर को बिठा करके अपने उन्होंने बोला कपटी बंदों के जरा पहले हमारे से उनके सुन बातें सुना दी, भ्रमर चला गया। लेकिन भ्रमर फिर वापस आ गया तो यहाँ पर वो बोल रही है कि क्या मेरे प्रियतम ने तुम्हें मुझे मनाने के लिए यहाँ पुनः भेजा है? क्या तुम हमें वहाँ ले जाना चाहते हो? परंतु उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी तो सदा उनके वक्ष स्थल पर ही निवास करती है, इसलिए हमारा निर्वाह वहाँ कैसे हो सकता है? यहाँ पर लक्ष्मी जी का उनके हृदय में जो स्मरण का आना है, लक्ष्मी जी सदा वहाँ पर रहती है, हम कैसे वहाँ रह सकती है? ये बात मुझे कोई समझ नहीं आई।
मैं नहीं समझा।
ये गोपियां कह रही है, गोपियां और राजा रानी भ्रमर को कह रही है तू फिर आ गया मेरे पास, मैं उनके साथ नहीं रह सकती क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा उनके साथ रहती है, इसलिए मेरा वहाँ पे उनके साथ रहना संभव नहीं है,
वहाँ नहीं हो सकता।
तो ये कह रही है कि ये विचार कि लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है, ये तो विचार ये आ गया कि वो नारायण है या वो भगवान है।
नहीं मतलब लक्ष्मी जी तो उनको वृंदावन भी पता है, उनके पक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी हैं।
वो तो यहाँ पर जो स्वर्ण रेखा है उसको देख करके उनको ईर्ष्या हो रही है, ये लक्ष्मी है, तो वहाँ कृष्ण लक्ष्मी को साथ में लेकर के हैं, तो उन सौतों के साथ में हमारा रहना कैसे संभव है? भाई तुम ऐसा क्यों हमको कह रहे, ये संभव कैसे है दो सौतें एक साथ में रहे?
वो नारायण को कृष्ण नहीं, कभी बेलबन में तपस्या किया, मैं रासलीला में सम्मिलित हो चुका, कठोर तपस्या करने पर भी कृष्ण ने कहा ब्राह्मणी धर्म को छोड़ना पड़ेगा, गोपों से स्त्री से विवाह होगा, जब गोपी तो बनेगी तब रास में आएगी, तब हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम स्वर्ण रेखा के रूप में हमारे हृदय वस्तक्षल पर रहेगी और इस तरह से तुमको ये सुयोग प्राप्त होगा। सबसे ये स्वर्ण
जब कृष्ण ब्रज में थे
तो ये कृष्ण में भी है, शायद राम में भी है, विष्णु तत्व सब में है।
जब कृष्ण ब्रज में थे, जब कृष्ण ब्रज में थे तब भी तो स्वर्ण रेखा उनके हृदय में था, हृदय में थी, तभी तो राधा जी का सखियों का सत्याधार नहीं हुआ कभी, इस समय क्यों हो रहा है?
मेरी समझ में नहीं है।
जब कृष्ण ब्रज में थे उस समय तो स्वर्ण रेखा उनके प्रकट था उसमें, उस समय
हमें जो बातें आती हैं वो मिलन में वो सब भूल जाता है बात, इसलिए विरह को सबसे उत्तम बतलाया है। हम लोगों को कृष्ण की विरह की भावना से ही भजन करना है। महाप्रभु सब समय हा उतास कर रहे हैं, कृष्ण है राधा भाव विभावित होकर के बस उनको विरह ही विरह दिखता है, जो उनमें भाव प्रकट हुए मांस के लौंदे बन गए, कभी शरीर लंबा हो गया, कभी सात डढ़ियों को पार करके उधर गिर गए, राधा जी में नहीं दिखता, भागवत में नहीं वर्णन है, किंतु उनमें जरूर होगा, जरूर होगा।
महाराज जी आपने ऐसा भी कहा है कि जो विरह है वो उसका मूल तो मिलन है, मिलन के बिना विरह को कैसे हम करेंगे, मिलन मूल है उसका, जो विरह जिस विरह में गोपियां रह रही हैं,
मिलन
मूल मूल मिलन है तभी तो विरह होता है। आप मूल विरह कहेंगे या मूल जहाँ से विरह निकला है वो मिलन है, उसको याद करके तो विरह आ रहा है,
तो मिलन होगा और मिलन के बाद में जब बिछुड़न हो जाएगा तब विरह होगा।
तो मूल किसको कहेंगे आप?
मूल तो मिलन है,
तो उसको ध्यान अपना नहीं रखना चाहिए हमें,
किंतु मिलन से मिलन में बाहर से मिलता है, विरह में भीतर से मिलता है, तो बाहर अच्छा है कि भीतर का है? भीतर का मिलन उसमें सारी बातों को स्मरण हो जाता है, उसमें वो खो जाता है, और मिलन में वो बाहर से मिलता है भीतर का सब कुछ।
तो वो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी है इस बात का उनको मालूम है, लेकिन विरह में स्मरण हो गया।
हाँ ये तो मालूम है उनको क्योंकि देखती हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो तो केवल 12 की कितने भाव दिखाए गए हैं, मादन मोदन में कितने भाव उठते हैं कहीं वर्णन नहीं हो सकता, उसका थोड़ा सा वर्णन है, कितना चिंता करें, अचिंत व्यापार है, जो कुछ समझा है वो बहुत थोड़ा है, नहीं के बराबर। कोई भी विश्व का रूप गोस्वामी कहते हैं कि उनके भावों को मैं उस भाव समुद्र के तट पर खड़े होकर के मैं दो एक को स्पर्श करता
हूँ। महाराज जी आपके कहने से ये लगता है कि जो भाव राधा जी के आपने हमें बताए थे, वियोगनी सयोगनी और वृषभानु नंदिनी को आपने मूल बताया था, वृषभानु नंदिनी, अब आप वियोगनी राधा जो विरह में है कृष्ण के उसको आप ऊंचा बता रहे हैं?
नहीं
अभी नहीं बताया, कभी भी नहीं बताया,
वो तो विषय के दृष्टि से ऐसा कहा गया,
विषय की दृष्टि।
कोई ही ऐसा है जो चाहे कि राधा जी से कृष्ण का वियोग है और मैं उसमें आनंद मालूम करूं, ऐसा
अब चाहते हैं राधा जी से कृष्ण का वियोग हो, नहीं चाहते, किंतु फिर भी तो होता है। इसलिए मैं कहता था जैसे ये वियोग बड़ा नहीं है, किंतु उसका विषय इतना है कि बाहर से मिलने से भीतर खो देता है, अब वियोग होने पर ऊपर का खो देता है किंतु भीतर में उसका है। तो इसलिए इस दृष्टि से ये उत्तम है।
साधक की भक्ति के लिए आवेश जरूरी है और विरह में आवेश होता है, वैसे आवेश नहीं
है। तत्व को समझिए पहले, तो ये तो चेष्टा कीजिए जो अनर्थ दूर हो, अनर्थ दूर हुआ है और चाहते हैं बड़ी लंबी ऊंची सूर्य को छूना चाहते हैं, अभी धरातल ही पर नहीं है, ठीक। इसलिए अभी सब लोग चेष्टा करो, अनर्थ हमारे दूर है। एक देशीय बहुदेशीय और
राय की पूर्णा आतंतिकी
और अत्यंती, ये सब निवृत्तियां हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहां पर
माधुर्य
अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत।
इसी बात पर महाराज जी एक बात और पूछनी है, इतनी अच्छी अच्छी कथाएं सुनते हैं आपसे, बहुत मन में लोभ आता है और उनका चिंतन करने का मन होता है क्योंकि सुना है, लेकिन आत्म साक्षात्कार अभी हुआ नहीं, तो क्या सिम्टम है कि आत्म साक्षात्कार मैं आत्मा हूँ, ये कैसे सिम्टम क्या है कि अपने आप को अनुभव करो मैं आत्मा हूँ?
ये ऑटोमेटिक रूप में होगा, जितना आपका भजन बढ़ेगा, बढ़ने के साथ ही साथ में अनर्थों की निवृत्ति होती जाएगी और सारे जितने शुभ हैं वो सब उदित होते जाएंगे, समझ रहे हैं ना? क्या है संसार
क्लेशग्नि सुभदा मोक्ष लोकता कृत दुर्लभा, क्लेशग्नि सुभदा
केतो दर्पण मार्जनम भाव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबुद्धि। विद्यावधु जीवन जब होगा तो अपने स्वरूप की उपलब्धि। केतो दर्पण मार्जनम किससे? हरि नाम से। कीर्तन क्या? उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए जो होगा वो कीर्तन। कीर्तन माने दिखलाने के लिए मृदंग के साथ में या ऐसा करते हैं, गले का कसरत, इससे नहीं, यथातथ वो कीर्तन हो जो हृदय को छू ले, उसे चेतो दर्पण मार्जनम। वो कब होगा? पहले गुरु पदाश्रय होगा, गुरु की सेवा होगी और उनके बतलाए हुए पथ से भजन करना होगा, उससे क्रमशः अनर्थ निवृत्ति होती जाएगी। वो एक देशीय निवृत्ति, फिर बहुदेशीय वृत्ति, अत्यंत की इत्यादि के रूप में होता जाएगा और उतने ही स्वरूप की उपलब्धि होती चली जाएगी, उसी के तारतम्य एक ही साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं।
पहले अपने स्वरूप की अनुभूति होगी या गुरुदेव के जो आंतरिक स्वरूप है उसका उदित होगा?
वही गुरुदेव के कृपा से तुम्हारा स्वरूप और कृष्ण का स्वरूप
और गुरु का,
गुरु का सखी के रूप में हो सकता है। चलिए पुराने बहुत कौन है
आपके? सनत कुमार दिल्ली के बाबू नारायण निप्पानी।
बाबू नारायण,
बाबू नारायण निप्पानी,
नारायण बाबा,
बाबा जी से
दूरदर्शन में प्रसारित करना चाहता है ब्रजमंडल परिक्रमा के बारे में कुछ बताएं।
क्या चीज है
ब्रजमंडल परिक्रमा का? सीरियल
है क्या?
ब्रजमंडल परिक्रमा के संबंध में कुछ दूरदर्शन में करना चाहते हैं तो आप ब्रजमंडल परिक्रमा के संबंध में कुछ बताएं, बर्षण के बारे में कुछ बताएं।
बताइए,
आपको बताने कह रहे हैं, रिकॉर्ड करेंगे।
हमने तो ब्रजमंडल के ऊपर में परिक्रमा बुक में सब कुछ दिया है,
रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड
दूरदर्शन है,
दूरदर्शन के लिए
आगे आगे
आगे आ जाइए,
आगे
रिकॉर्ड कर रहे हैं। ब्रजमन है, ब्रज का अर्थ होता है ब्रजती चलती, और जगत का अर्थ भी है गम धातु से चलना। जगत का में जो चलने का भाव है उसमें हम ध्वंस की तरफ में क्रमशः बढ़ रहे हैं, विषयों की तरफ में क्रमशः, और ब्रजमन है उसका उल्टा। हम लोग राधा कृष्ण के प्रेम की ओर में बढ़ रहे हैं, ब्रजति उसमें भी वही है, ब्रज की यात्रा करने से कृष्ण की लीलाओं की स्फूर्ति होती है। जब गोवर्धन में जाते हैं तो कृष्ण की लीलाएं अपने आप क्या क्या किया, गोवर्धन को उठा लिया, गोपियां उनकी तरफ में देख रही हैं, प्रथम मिलन उनका ये पूर्व राग यहीं से आरंभ हुआ, इंद्र का मान मर्दन किया, इसके बाद में बरसाना का लीला, राधा जी कभी साकेत वन में आती थी और कृष्ण भी वहां पर संकेत में आते थे, दोनों का मिलन होता था, सखियां उनका मिलन कराती थी, ये सब अपने आप स्फूर्ति हो जाती है। जब हम भांडी वन में जाते हैं तो स्मरण आ जाता है कि यहाँ राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह हुआ, विवाह नहीं गंधर्व विवाह, और यहीं पर सखाओं के साथ में कृष्ण आते थे, नाना प्रकार की भोजन क्रीड़ा कौतुक वहां पर प्रकाशित होता था, और राधा और कृष्ण का मल्ल युद्ध हुआ जिसमें कृष्ण की मधुर पराजित हुए कृष्ण। वहीं पर प्रलंबासुर का वध हुआ, उन्होंने गोपियों की प्यास बुझाने के लिए वेणु से ही सुंदर मीठा जल निकाल दिया। पास ही में रासलीला स्थली बंसी भट्ट है, यहाँ पर रास हुआ था। ये सब ब्रज में जहाँ भी जाएंगे वो वन ही, वो पर्वत ही, वो नदी यमुना, अपने आप वो बोलने लगती है कृष्ण की लीला कथा। उसका और एक बड़ा भारी प्रभाव है, ब्रजमंडल में जो जाएगा एक दिन भी निवास करेगा उसको भक्ति हो जाएगी। कृष्ण कभी छोड़ करके वृंदावन, और राधा जी भी विशुभानंदिनी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते हैं, ये कहीं कहीं पर अनुभूति का विषय होगा। ये सब ब्रज यात्रा में ये लाभ है, जो चीज हजार भजन करने से नहीं होगा वो ब्रज की यात्रा करने से, विशेष करके साधुओं के साथ, विशेष करके गौड़ीय वैष्णवों के साथ, विशेष करके हम लोगों के साथ में, जहाँ पर जो लीलाएं होती हैं इसको हम वर्णन करते हैं, उनको हम विस्तृत रूप से बतलाते हैं कौन सी लीला कहाँ पर हुई। भागवत पढ़ना उसी में हो जाता है, पृथक रूप में भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तत्व का ज्ञान भी हो जाता है। इसीलिए परिक्रमा हम लोग प्रति वर्ष करते हैं, बस संक्षेप में यही
ठीक हो।
जय हो, जय हो, आपकी जय हो।
गुरुदेव
अच्छा
क्या है, बीमार हो गई क्या?
हाँ
बीमार क्यों पड़ती है, मत बीमार पड़ो।
हो गया
और वो कहाँ है?
हम इनके घर में
आए हैं।
नहीं आ नहीं सकते थे ना, फिर वो चला
क्या हो गया?
स्कूटर चलाना नहीं चला नहीं सकते ना।
और सब लोग
बीमारों को तो हम इनके घर में भेजते हैं ठीक करने के लिए। इनका बेटा करता है।
महाराज जी एक मेरे को बात पूछनी है, बहुत दिनों से मैं पूछता है।
क्या करती हैं आपको?
जो प्रेत बाधाएं होती हैं, जो घर पर किसी के पितृदोष या जो कुछ, उसका लिए क्या उपाय है और क्या करना चाहिए?
ये कह रही है पितृदोष है लगा हुआ है या प्रेत बाधाएं आती हैं, उसका क्या उपाय है?
जो हरिनाम करेगा निरंतर, प्रेत बाधा, प्रेत का बाप भी नहीं आ सकता, वो मन का भय है, वो दूसरा कुछ है।
महाराज जी जैसे
वो मारे प्रेत का भय छोड़ करके हरिनाम करो, जोर जोर से करो हरे कृष्ण
गुरुदेव। हरिनाम करते वक्त हमारा
हरिनाम करने से कभी भी प्रेत नहीं होता।
जैसे परिवार में सब कहते हैं, जैसे काम धंधा सारे सब बंद हो गए,
तो कहते हैं
सारा ऐसे आपस में मनमुटाव हो गया भाई भाई में।
अपने कर्मों का फल है, भूत प्रेत के फेर में मत पड़ो, अपना भजन करो।
गुरुदेव हरिनाम करते वक्त हमारा चिंतन क्या रहना चाहिए, हमारी सोच क्या रहनी चाहिए?
क्या
हरिनाम करते वक्त हमारा चिंतन क्या रहना चाहिए, मतलब हमें शब्दों पे ध्यान देना चाहिए?
हरिनाम के समय में नाम को प्रभु भगवान कृष्ण जानकर उनसे प्रार्थना करो।
प्रार्थना करते करते हमें हरिनाम लेना, लेकिन जैसे ध्यान भटकता है तो फिर क्या करें?
ध्यान में क्या लाना चाहिए,
ध्यान में क्या लाना चाहिए? जैसे अभी मुझे
लाओ, मैं गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं वृंदावन की परिक्रमा कर रहा हूँ, जो यशोदा मैया कृष्ण को कैसे बांध रहे, ये सब चीजें
लीलाओं का चिंतन करें।
हाँ
बिना फोन कर निर्जाशित का आशीर्वाद दिए दी। बिना निर्जाशित के फोन करे थे बिना अग्रवाल न्यूयॉर्क अमेरिका।
हरे कृष्णा,
टर्न ऑन द माइक।
हाँ जी, हमारा स्नेहा आशीर्वाद ग्रहण करो, सब कुछ हमारा मैं ठीक हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी और बेटी कैसी है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है,
बहुत खुशी की बात है।
तुम्हारे अंदर तो होना चाहिए।
और भी बनाना है।
ये जमीन प्रॉपर्टी डेवलप करके बड़ी बड़ी, इनके मन में ऐसी भावना है कि ये सारे मठ का पत्थर लगवा देंगे। वो कहते हैं ऐसा मेरा काम निकल जाए तो ये मैं संकल्प करता हूँ।
आपका संकल्प बहुत सच्चा है भगवान का।
Doctor, heart doctor.
Yeah.
Call.
Sunday, 31st, 29th, ready, that he wants to travel on
29th evening. Oh, no, Giridhari. Chalo, chalo, Giridhari Brahmachari. Ah,
I'm going to go to the next one.